हमें बहुत आनंद हो रहा है इस बहुत सुंदर श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के मंदिर में आज ये बलराम जयंती महोत्सव का जो एक इतनी सुंदर आयोजन हुआ है उसमें योगदान करने का अवसर मिलने से मैं बहुत दिन से यहां आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अवसर नहीं मिला। मैं मंदिर का जब उद्बोधन हुआ था तभी आना था, बल्कि उस समय मैं नहीं आ सका। बल्कि आज ये मंदिर देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ हूं, इतना सुंदर मंदिर बना है। भगवान के भक्त लोग जब भगवान के सेवा में युक्त होते हैं तो भगवान का कृपा उनकी माध्यम से प्रभावित प्रवाहित होता है, जिसे भगवान का शक्ति का आवेश कहा जाता है। भगवान अपने भक्तों के माध्यम अपना कार्य संपादन करना चाहते हैं, और जब भक्त भगवान को सेवा करने का प्रयास करता है, अभिलाष करता है, तो भगवान उसके सारे आशीर्वाद देते हैं और शक्ति देते हैं, जिसकी द्वारा भगवान का भक्त कितने महान कार्य संपादन कर सकता है। ये मंदिर उसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, निदर्शन है। और ये भी देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आप कितने भक्त लोग कृष्ण भक्ति में जोड़े हैं। ये मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था कि कोई भक्त रास्ता में ऐसे माला लेकर जप कर रहे हैं, तो बाल गोविंद प्रभु को मैं कह रहा था, ये देखने में कितना सुंदर लगता है कि इतने सारे लोग इस शहर में भगवान को नाम जप रहे हैं। तो बाल गोविंद प्रभु जी ने मुझे बताया कि इस शहर में हर बिल्डिंग में दो तीन भक्त हैं, भक्त फैमिली है। तब मैं भी बोला, पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम, पृथ्वी में जितने सारे शहर हैं, गांव हैं, हर जगह इस भक्ति का प्रचार होगा। इसका तो शुरुआत केवल हुआ है। प्रभुपाद लगभग 48 साल पहले इस कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कान का स्थापना किए थे। 10 साल के अंदर प्रभुपाद कृष्ण भक्ति सारा दुनिया भर प्रचार किया, और आज हम देख रहे हैं, यद्यपि 50 साल भी क्या है, 50 साल, बल्कि इस्कान का उम्र अब तक 50 भी नहीं हुआ, 48 years, लेकिन इस्कान का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। भगवान की कृपा से आज कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। आप लोग जैसे बुद्धिमान मेधावी व्यक्तिगण इस कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। जजंती ही सुमेध सह, कलियुग में जो बुद्धिमान है, सुमेधा संपन्न है, जिसका मेधा मतलब बुद्धि, स्मृति, धृति सुंदर है, वो ये कृष्ण भक्ति के मार्ग अपनाएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र जप या कीर्तन करेंगे। जो कर रहा है वो बुद्धिमान है, सुमेधा है, और जितने सारे सुमेधा हैं दुनिया में एक दिन सब कृष्ण भक्ति को अपनाएंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि ये कृष्ण भक्ति का मार्ग ही केवल सही मार्ग है। तो आज बलराम जयंती है, तो बलराम जयंती की शुरुआत में मैं एक गीत गाने का प्रबंध किया है, वो है श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद का 31 अध्याय, जिसका नाम है गोपी गीता। गोपी गीता का जो नवम श्लोक है उसमें कृष्ण नाम का महिमा का वर्णन हुआ है, कृष्ण कथामृत का महिमा वर्णन हुआ है, इसलिए मैं नवम श्लोक पहले गाएंगे, उसके बाद प्रथम और द्वितीय श्लोक। प्रथम श्लोक में वर्णन हो रहा है श्री कृष्ण का वृंदावन में जन्म होने से वृंदावन का स्थिति कैसा हुआ, कितना पवित्र हुआ। लेकिन गोपियों ने कह रहे हैं सबको आप इतना सौभाग्यवान बनाए हैं वृंदावन में, बल्कि हमारा ये दुर्भाग है कि आपको दर्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि गोपियों ने ढूंढ रहे थे कृष्ण को। वृंदावन में रास विलास करते हुए श्री कृष्ण अचानक रास मंडली छोड़कर चले गए, तब गोपियां ने जब उनको ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते जमुना के तट पर आई और आके अपना मनोभाव, मन की वेदना प्रकाश करते हुए जो कह रहे थे उन्होंने, वही है गोपी गीता। और तृतीय श्लोक में भी अपना विरह, श्री कृष्ण के विरह में उनका जो हाल हुआ उसका वर्णन हुआ है। तो आज ये हम केवल ये तीन श्लोक गाएंगे, तो इसका प्रोजेक्शन हो चुका है। अच्छा, ये थर्ड, ओके, ऑल देयर। तो आप भी मेरे साथ गाएंगे।
तब कथामृता तप्त जीवना कवि भीरीता कल्मषापः तब कथामृता तप्त जीवना कवि भीरीता कल्मषापः। श्रवण मंगल श्रीमदातथा भूवि गृणन्ती जे भूरिदा जना श्रावण मंगल श्रीमदाकता भूवि गृणन्ति ये भूरिदायना जयति ते धिका जनमना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतग्रहि जयति ते धिका जनमना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतग्रहि द्वैत दृश्यता दीक्षुतावता द्वैधृता शवा तां विचिन्नते द्वैत दृश्यता दीक्षुतावता द्वैधृता शवा तां विचिन्नते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदरो श्रीमुषादृशा शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदरो श्रीमुषादृशा स सुरतनाथते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं बाधा सुरतनाथते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं तब कथामृता ताप्त जीवन कोबिभिरीरिता कल्मषापः श्रवणमङ्गला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना Hare Rama, Hare Rama. हरे हरे तबो कथमरिता तप्त जीवना कवि भीरीता कल्मषाः श्रवण मंगल श्रीमदात भूवि गृणती ये भूरिदाजन ये भूरिदा जना
हरे कृष्ण नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिसुतारिणे श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। बलराम जयंती अर्थात श्री बलराम का जन्म तिथि महोत्सव। भगवान केवल भगवान ही नहीं जीवात्मा भी अज है, जन्म नहीं होता है। जीवात्मा के बारे भी भगवान कह रहे हैं अज नित्य शाश्वत अयं पुराणम् न हन्नते हन्न माने शरीरे। जीवात्मा का परिचय प्रदान करते हुए भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अज ये जीव जो है आत्मा जो है ये अज है। तो अगर जीवात्मा का भी जन्म नहीं होता तो भगवान का जन्म का क्या प्रश्न होता है। और भगवान बताया भी भगवद गीता में जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दिव्य है। मतलब लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जबरदस्त लेना नहीं पड़ता है जैसे जीव का होता है। कर्म के फेर से जीव का शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार कल कर्म के फल के अनुसार जीव को शरीर मिलता है। सत्य गुण के प्रभाव से ऊपर जाते हैं, मतलब उच्चतर लोक में जन्म होता है। ऊर्धं गच्छन्ति सत्यस्था, जैसे देव योनि प्राप्ति होता है सत्वगुण के प्रभाव से, मुनि ऋषियों का स्थिति मिलता है सत्वगुण के प्रभाव से। लेकिन मध्य तिष्ठति राजसा, इस पृथ्वी लोक में रजोगुण के प्रभाव में, रजोगुण के प्रभाव से पृथ्वी में रहना पड़ता है। और जघन्न गुण प्रतिष्ठा अधोगच्छन्ति तामसः, और जो बहुत बुरा जघन्य घृण्य जो तमोगुण है, तमोगुण के प्रभाव से निम्न योनि का प्राप्ति होता है, पशु योनि, राक्षस योनि, असुर योनि, ये मिलता है। तो अपने कर्म के अनुसार आत्मा ऐसे कभी ऊपर के लोक में जाते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं, ऐसे भ्रमताम उपरध्यतः, भ्रमण कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। तो जीव की उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। आकर भगवान किस तरह भी आ सकते हैं, सीधा वैकुंठ से आ सकते हैं, कभी कभी ब्रह्मा के नाक से निकलते हैं वराह देव के रूप में, कभी द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के बिछारे, गरुड़ के गरुड़ पर चढ़कर द्वारका से सीधा आ जाते हैं, चक्र से ग्राहो को मारी गजराज को उधारे, गजराज को उद्धार करने के लिए भगवान आ गए थे सीधा। कभी कभी स्तंभ के बीच में से निकल आते हैं, जैसे नृसिंहदेव, और कभी कभी मनुष्य रूप में जन्म लेकर आते हैं, जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, बलराम। कृष्ण का जन्म के पहले देवकी का गर्भ में बलराम का आगमन हुआ था। भगवान बलराम सप्तम गर्भ में बलराम आए थे, देवकी का अष्टम पुत्र के द्वारा कंस का संहार होने वाला था। ये निर्देश, ये भविष्यवाणी कंस ने खुद सुना था, तो इसलिए कंस ने जब ही देवकी का संतान हुआ उसको एक के बाद एक मार डाला, इतना निष्ठुर था। यद्यपि उनसे कंस का कोई डर नहीं था, क्योंकि अष्टम गर्भ से ही कंस का डर था, लेकिन कंस कोई चांस नहीं लेना चाहा। अष्टम गर्भ कौन विचार से, आगे से पीछे या पीछे से आगे, ये तो हो सकता है। तो इसलिए कंस ने सोचा सबको ही मार डालो, कोई चांस लेने का जरूरत नहीं है। एक के बाद एक देवकी का छह पुत्र को कंस ने हत्या किया, और तत्पश्चात सप्तम गर्भ में बलराम का आगमन हुआ। अष्टम गर्भ में कृष्ण आने वाला था। सप्तम गर्भ में कृष्ण बलराम क्यों आया, क्योंकि बलराम कृष्ण के जितने सारे सेवा का आयोजन होता है वो बलराम करते हैं। तो देवकी के गर्भ में कृष्ण आने वाला है, तो इसलिए बलराम पहले आया, ताकि टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर कृष्णस अराइवल इन देवकीज होम। और तत्पश्चात कृष्ण ने जोगमाया को बोला कि तुम बलराम को आकर्षण करके देवकी का गर्भ से रोहिणी का गर्भ में ले जाओ। तो इसलिए जोगमाया के प्रभाव से बलराम का स्थानांतर हुआ देवकी का गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी भी वसुदेव का और एक पत्नी थी। कंस की अत्याचार के कारण देव वसुदेव ने वसुदेव ने देवकी रोहिणी को नंद महाराज के वहां भेज दिया था। नंद महाराज के वहां वृंदावन में रोहिणी थी और वहां अष्टम सप्तम गर्भ का स्थानांतर हुआ। तो इसलिए बलराम का और एक नाम है संकर्षण। जोगो माया में ने उसको आकर्षण करके रोहिणी का गर्भ में ले गया और तत्पश्चात कृष्ण का आगमन हुआ देवकी का गर्भ में। श्री कृष्ण अष्टम संतान के रूप में आए थे। बलराम कृष्ण को इसलिए कृष्ण के बड़े भाई हैं, दाऊजी। और बलराम कृष्ण को देखभाल करते हैं। यद्यपि बलराम को भी पता है कृष्ण स्वयं भगवान है, उसको देखभाल करने का, उसको संभालने का क्या सवाल है। बल्कि ये नरलीला हो रहा है, मनुष्य रूपी लीला हो रहा है वृंदावन में। ये एक विशेषता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान नहीं है। वृंदावन में कृष्ण एक ग्वाल बाल है। वृंदावन में कृष्ण है गोपाल, और ये गोपाल नंद नंदन ही स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण अवतार नहीं है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन हुआ है कि श्री कृष्ण अवतार नहीं। यद्यपि भगवान का अगणित अवतारें हैं, बल्कि उन सारे अवतारों का स्रोत है श्री कृष्ण। कृष्ण अवतार नहीं, श्री कृष्ण है अवतारी। और वो श्री कृष्ण है नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र। ये शिक्षा हमें चैतन्य महाप्रभु से मिला। शास्त्र के आधार पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन हुआ है, अवतार ही असंख्यो। 21 अवतारों का वर्णन करने के पश्चात भागवत का प्रथम स्कंद में ऐसा वर्णन हुआ है। द्वितीय अध्याय में 21 अवतार का वर्णन होकर पश्चात बताया गया ऐसे भगवान का अगणित असंख्य अवतारे हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण के आविर्भाव के पूर्व में जयदेव भी गीत गोविंद में ये वर्णन किए हैं। गीत गोविंद के शुरुआत में मंगलाचरण में दशावतार स्तोत्र, भगवान के 10 प्रकार के अवतार के वर्णन हुआ। मीन, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, ऐसे 10 अवतार का वर्णन करने के पश्चात क्या कह रहे हैं? केशव धृता मीन शरीर। केशव कृष्ण ये मीन शरीर धारण किए हैं। धृता केशव धृत कूर्म शरीर, केशव धृत शूकर रूप, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत नरहरि रूप। सभी केशव धृत मतलब श्री कृष्ण ने ये रूप अपनाया है, इस अवतार में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण अवतारी है। ब्रह्म संहिता में भी इसके वर्णन हुआ है कि रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अकरोद भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमानजो। राम, नृसिंह, वराह, कूर्मा आदि भगवान के बहुत सारे अवतारे हैं। रामादि मूर्तिषु, लेकिन ये सब कला है, अंश के अंश अंश उसका अंश इसे कला कहा जाता है। ये सब अवतार जो है ये सब भगवान का अंश या कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान जो, लेकिन कृष्ण ही स्वयं भगवान परमेश्वर परम पुरुष श्री भगवान है। यह है कृष्ण का परिचय। तो इसका मतलब क्या अवतार और भगवान में कोई अंतर है? कृष्ण और अवतार में अंतर नहीं, इसका भी वर्णन हो रहा है, कोई अंतर नहीं। जैसे दीपार चिरेव दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म, एक दिया से जैसे दूसरा दिया जलाया जाता है और दिया जब जल जाता है जलने के पश्चात समान धर्म एक ही ज्योति और ताप प्रदान करता है। दिया जलने के पश्चात पहला दिया और बाद के दिया में कोई अंतर नहीं रहता है, वैसे ही कृष्ण और अवतार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण ही है पहले दिया जो और सब दिया को जलाया था और जिससे और सब दिया जला था। पहला दिया जला, उससे और दिया जला, और दिया जला, तो लेकिन इसका मूल कारण कौन है दिया जलने का? पहले जो दिया था वो पहला दिया या पहला जो जिनमें से सारे अवतार का प्रकाश हुआ है वो है श्री कृष्ण। और ये श्री कृष्ण वृंदावन में नित्य विलास करते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण वृंदावन में, ये जो परमेश्वर भगवान परम पुरुष अवतारों का अवतारी जो स्वयं भगवान है वो वृंदावन के रहने वाले हैं। वृंदावनं परित्यज्य कुत्र कदापि न गच्छति, ये कृष्ण वृंदावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते हैं। और ये कृष्ण है नंद महाराज के पुत्र, ये शिक्षा हमें श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल रहा है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, जैसे इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में है, ब्रह्म संहिता में है और सारे पुराणों में है। महाप्रभु ने जो कह रहे हैं ये शास्त्रिक प्रमाण के आधार पर ही उसका वर्णन हुआ है। तो ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण है नंद महाराज के पुत्र। आराध्य भगवान ब्रजेश्वर तनय, ब्रजेश्वर तनय, ब्रज ईश मतलब नंद महाराज, उसका तनय मतलब पुत्र। आराध्य भगवान ब्रजेश्वर तनय और सद्धामो वृंदावनम, उनका धाम, उनका रहना, उनका नित्य स्थिति वृंदावन में है। तो ये है स्वयं भगवान। ये स्वयं भगवान का पहला प्रकाश है बलराम, वृंदावन में भगवान से बलराम का प्रकाश हुआ, पहला प्रकाश। ये हमें समझना होगा कि ये अचिंत्य है, ये जो विचार, ये भौतिक भावना जैसे भौतिक बुद्धि के द्वारा विचार के द्वारा हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे होता विचार, अगर कृष्ण से बलराम का प्रकाश हुआ तो बलराम बड़ा भाई कैसे बना? तो बलराम तो लगता है कि बलराम पहले आया उसके पश्चात कृष्ण आया, नहीं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है और उनका प्रथम प्रकाश जो है वो है उनका बड़ा ही भाई। इसका पीछे भी एक कारण वर्णन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी भगवान का अवतार जब होते हैं, भगवान का कार्य जब होता है, एक लीला के द्वारा भगवान हजारों कार्यों को संपादन करते हैं। लीला क्यों करते हैं? लोगों को, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और अभक्तों के मन में नास्तिकता बढ़ाने के लिए। जो नास्तिक है वो और बड़ा नास्तिक बन जाता है, और जो भक्त हैं वो और भी वरिष्ठ भक्त बन जाता है। ये है भगवान का लीला का। The demons become more antagonistic and devotees become more attracted. ये भगवान का लीला है। कितने लीला, एक लीला के द्वारा भगवान कितने सारे कार्य संपादन करते हैं। इस बलराम के रूप में, इस लीला में, द्वापर लीला में, द्वापर में, ब्रज लीला में, बलराम का आने का पीछे एक कारण का वर्णन पुराण में हुआ है। जैसे श्री रामचंद्र ने जब सीता को उद्धार करके, रावण को हत्या करके, संहार करके, सीता को उद्धार करके जब अयोध्या में आप वापस आया तो सब उनका गुणगान करने लगा, कितना महान कार्य किया है। जो रावण इतना भयंकर अत्याचारी था, जिसके कारण सब सद आदमी ने कष्ट भोग रहा था, दुष्ट लोगों का वृद्धि हो रहा था और साधुओं का कठिनाई हो रहा था इनके लिए, इस रावण को कोई हत्या करने नहीं पाया। जैसे जमराज भी रावण को हत्या नहीं कर पाया, जमराज करने सकता था, जमराज रावण को, रावण के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था मारने के लिए, तो ब्रह्मा जी आके जमराज को बताया ये उसको मत मारो क्योंकि ये तुम्हारे हाथ से मरने वाला नहीं है। वो उसका मृत्यु का समय अब तक नहीं आया, स्वयं भगवान आकर उसको उसके साथ मुकाबला करेंगे। तो जमराज वहां से अंतर्हित हो गया। तो रावण ने सोचा मैं जमराज को भी हरा दिया है, इतना शक्तिशाली था यह रावण, उसको कोई संहार नहीं कर पाया, संहार के उसके साथ मुकाबला भी किसी ने करने नहीं पाया। तब जब ऐसे सब रामचंद्र का प्रशंसा कर रहा था रावण को संहार करने के लिए, तो अगस्त मुनि ने, जो वहां उपस्थित थे, सारे बहुत सारे मुनि ऋषियों ने वहां थे, अगस्त से वशिष्ठ था, विश्वामित्र था, तो अगस्त ने बताया नहीं, इसका असल क्रेडिट है लक्ष्मण का। सब पूछा क्यों, रामचंद्र तो रावण का संहार किया, कुंभकर्ण को संहार किया। अगस्त ने बताया रावण को, कुंभकर्ण को हत्या करना संभव हुआ क्योंकि इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा है, हत्या किया। इंद्रजीत अगर जिंदा रहता था तो रावण को हराना मुश्किल होता था, असंभव नहीं होता था। और तब अगस्त ने बताया कि इंद्रजीत, रावण का जो पुत्र, उसका एक वर मिला था कि उसका मृत्यु उनकी हाथ में होगा जो 14 साल कुछ नहीं खाया है और जो 14 साल ब्रह्मचारी था। तो रामचंद्र ने बताया लक्ष्मण ब्रह्मचारी कैसे रहा, सीता तो हमारे साथ थी, जो ब्रह्मचारी है वो तो स्त्री का मुंह भी दर्शन करते नहीं। तब अगस्त ने बताया हां लक्ष्मण तो था तुम्हारे साथ, सीता देवी के साथ, लेकिन लक्ष्मण कभी सीता देवी का मुंह नहीं देखा। तब रामचंद्र को याद आया, हां यह बात तो सही है, जब नृसिंहमुख पर्वत में बंदरों ने सीता का जो गहना अलंकार जो दिखाया तो रामचंद्र ने लक्ष्मण को दिखाया, लक्ष्मण ये तुमको क्या है? लगता है ये सीता का है ना? लक्ष्मण देखने के पश्चात बोला, मैं तो केवल एक ही अलंकार एक ही मैं पहचानता हूं जो है उनका सीता का पायल, क्योंकि मैं उनके पैर बिना और कुछ नहीं देखा, मेरा दृष्टि केवल उनका पैर पर ही था। तो हां ये पैर पायल उन्हीं का है। तो रामचंद्र को याद आया, हां लक्ष्मण 14 साल तक जब हुआ था, हाँ मतलब सीता देवी जब उनके साथ थी 13 साल तक, कभी उनका मुंह नहीं देखा। तब बात रामचंद्र ने बताया, बल्कि हर रोज तो मैं लक्ष्मण को एक फल देता था। तो अगस्त ने पूछा, लक्ष्मण तुम ही बताओ वो फल लेकर तुम क्या किया? तो लक्ष्मण ने बताया, हां आप तो फल देते थे और आप बोलते थे ये लो, आप कभी नहीं बोला ये खाओ। इसलिए मैं खाया नहीं, वो बन में ही वो फल को वापस कर दिया। तो रामचंद्र ने हनुमान को भेजा, जाओ वन में जाकर देखो तो लक्ष्मण के ये बात सही है या नहीं। तो हनुमान गया, देखा वो फल वन में ही रह गया, रामचंद्र का हाथ का स्पर्श होने से, लक्ष्मण का हाथ का स्पर्श होने से वो फल भी अमृत बन गया, वो जैसा कि तैसा रह गया। तो लक्ष्मण ने हनुमान ने गिनकर देखा कि 4 फल कम है, आके बताया कि 4 फल कम लग रहा है। रामचंद्र पूछा, लक्ष्मण क्या हुआ, 4 फल तुम खाया था क्या? लक्ष्मण ने बोला, नहीं 4 दिन आप हमको फल देने को भूल गए। जब पिताजी का देहांत का संवाद आया उस रोज आप हमें फल देने को भूल गया। जब रावण ने सीता देवी को चुरा के ले गया उस दिन भी आप हमको फल देने को भूल गया। जब शक्तिशेल के आघात से मैं अचेतन हो गया था उस दिन हमें फल नहीं मिला, और जिस दिन सीता को अग्नि परीक्षा हो रहा था उस दिन भी आप फल देने को भूल गए। तब रामचंद्र बोला, देखो मेरा छोटे भाई होने के नाते तुमको कितना कष्ट स्वीकार करना पड़ा, तो अगला लीला में तुम मेरे बड़े भाई बनोगे। तो इसलिए द्वापर लीला में, कृष्ण लीला में बलराम लक्ष्मण बड़े भाई के रूप में, बलराम के रूप में आए हैं। ये एक लीला का एक दृष्टिकोण है, एक अंश है, बल्कि असल में बलराम श्री कृष्ण का पहला प्रकाश है वृंदावन में। नित्य ये स्थिति बलराम का नित्य है, और बलराम कृष्ण के बड़े भाई होने से भी कृष्ण का देखभाल करते हैं, बड़े भाई हैं। तो कृष्ण जब वन में जाता था तो नंद महाराज ने, मां यशोदा ने बलराम को बोलता, देख बलराम ये कृष्ण छोटा है उसको संभालना। और बलराम भी बोलता है, हाँ ठीक है मैं देखूंगा, फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे कृष्ण का कुछ नहीं होगा। और बचपन में भी दो भाई बहुत सुंदर खेलते थे, जानू चंक्रमण करते थे, जो चलते थे बच्चा जब होता था तो दोनों एक साथ, जानू का मतलब हाथ और पैर के ऊपर चलते हैं, क्रॉल, और जब छोटा सा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा होने के पश्चात वो दोनों जब आंगन में खेलते थे तो आंगन में बछड़ा होता था, तो वो जाकर बछड़ा का लेज पकड़ लेता था और डर के मारे अचानक ऐसे लेज पकड़ने के कारण बछड़ा भागता था और दोनों भाई वैसे उसको पकड़ पर घूमता था। ये एक उसका एक खेला था। That was one of their games that they used to play. और जब 5 साल का हुआ कृष्ण बलराम, तब उन दोनों ने गाय चराने जाते, गाय नहीं बछड़ा, ये उनके एक अप्रेंटिसशिप जैसा है ग्वालों का। बच्चे लोग बछड़ा चराते हैं और बड़े होने से गाय चराते हैं, वो बछड़ा चराकर उसको ट्रेनिंग मिलता है। तो एक दिन ऐसा बछड़ा चरा रहे हैं 5 साल के कृष्ण बलराम, तो एक असुर बत्सासुर एक बछड़ा के रूप लेकर आया। कंस ने उसको भेजा कृष्ण को मारने के लिए, तो वो बछड़ा को देखकर कृष्ण ने बलराम को बताया, देखो ये दाऊजी, ये लगता है ये बछड़ा नहीं है, ये और कोई है, होगा शायद एक असुर। तो दोनों में विचार हुआ, तो इसको क्या करेंगे, तुम इसको संभालोगे या मैं संभालूंगा? कृष्ण बोले मैं ही संभालूंगा। तो बछड़ा जब अचानक आक्रमण किया कृष्ण को, तो कृष्ण ने बछड़ा का पैर पकड़कर ऐसे सिर के ऊपर घुमाने लगे, घुमाते घुमाते इतना घुमाया उसका शरीर से उसका प्राण निकल गया। तब उसको फेंका एक कपित्थ वृक्ष के ऊपर, वो बत्सासुर का मृत्यु हुआ। इसके पश्चात कृष्ण बकासुर, अघासुर आदि बहुत सारे असुरों को संहार किया। अधिक से अधिक असुरों का संहार कृष्ण ने ही किया था, बलराम केवल 2 असुर को संहार किया, एक है धेनुकासुर और प्रलंबासुर। धेनुकासुर था गधा, गधा क्या करता है, अच्छा वो मैं बाद में बताऊंगा। वो धेनुकासुर ताल वन में रहता था, वृंदावन में 12 वन है, उनमें से एक है ताल वन। वो ताल का फल होता है जो बहुत उसका बहुत खुशबू होता है। तो ग्वालवाल ने ऐसे एक दिन उसको कृष्ण बलराम में जाकर बोला, बहुत भूख लगा कृष्ण, तो और एक बालक बोला, ये इस नजदीक ही एक ताल का वन है और देखो सब ताल ये पक गया है, कितना खुशबू आ रहा है, चलो हम वहां जाके ताल खाते हैं। और एक बालक बोला, नहीं वहां मत जाओ, वहां एक धेनुक नामक एक बहुत भयंकर असुर है, जो भी वहां जाता है उसको मार डालता है। तो ये सुनकर बलराम बोला, क्या धेनुकासुर, चलो हम उसके साथ मुकाबला करेंगे, चलो फल खाना है ना, चलो हम सब वहां जाते हैं। जाकर बलराम और ताल का जो पेड़ है उसको पकड़कर हिलाने लगे और सब पका हुआ फल गिरने लगा जमीन पर। तो ये शब्द सुनकर धेनुकासुर बहुत क्रोधित हो गया, कौन मेरा मन में आया है। तो वो आकर देखा ये बच्चे लोग फल खा रहा है, तो देखा कि ये एक लड़का बलराम सारे पेड़ से फल निकाल रहा है, तो बलराम को आक्रमण किया। गधा क्या करता है, वो पीछे का पैर से लात मारता है। तो ऐसे जब लात मारने गए बलराम को, बलराम उसको पैर पकड़ लिया और उसको सर के ऊपर ऐसे घुमाने लगा। असुरों को संहार करने का ये एक फेवरेट तरीका था उनका, सर के ऊपर घुमाते घुमाते। विशेष रूप से जब जानवर आता था, ऐसे बत्सासुर को मारा बलराम ने, धेनुकासुर को मारा, कृष्ण ने केशी को मारा जो एक घोड़े के रूप में आया था, तो ऐसे धेनुकासुर का देहांत हो गया बलराम के हाथ से। इसका और एक विचार है, ये जो असुर जो है ये हमारे एक वृत्ति का, असत वृत्ति का, गलत मनोभाव का द्योतक है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसका वर्णन किए हैं। तो धेनुक मतलब गधा, गधा का हालचाल कैसा होता है, गधा वाई गधा इज फेमस, गधा इज फेमस एंड एस इज फेमस फॉर इज स्टुपिडिटी, राइट। तो बलराम क्या करते हैं, ये धेनुकासुर को मारता है। धेनुकासुर क्या करता था, वो जो फल जो है तालवन का उसको संभालता था, वो खुद नहीं खाता और दूसरे को भी खाने नहीं देता। तो ऐसे हमारा जो कर्म का जो प्रवृत्ति है, कर्म का भोगने का जो प्रवृत्ति है, उसको संभालने का, उसका संशोधन करना कौन करते हैं, श्री गुरुदेव करते हैं। और बलराम है आदि गुरु, मुख्य गुरु, और जो गुरु बन के गुरु भगवान को पास हमें ले जाते हैं, वो है श्री बलराम का ही प्रकाश। बलराम के कृपा से ही हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। ऐसे ही जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु के पास हम जा सकते थे। है नो निताई बिना बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई, ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा बिना राधा कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु को हम प्राप्त नहीं हो सकते। Till what time the class should go on? Another 10 minutes, okay. तो बलराम ऐसे धेनुकासुर को संहार किया, और एक असुर को संहार किया, वो है प्रलंबासुर। जब कृष्ण ने एक के बाद कंस ने एक के बाद एक असुरों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए, और कृष्ण उनको सबको संहार कर दिया, तब कंस ने प्रलंबासुर को भेजा। प्रलंबासुर देखा कि कृष्ण के साथ मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है, जो भी जाता है कृष्ण उसको मार डालता है, तो चलो हम बलराम को मार डालेंगे, और बलराम अगर मर जाएगा तो कृष्ण भी जीना नहीं सकेंगे, कृष्ण भी मर जाएगा, क्योंकि वो इतने उसके प्रति इतना वो गहरा प्यार है, वो कितना आकृष्ट है। तो ये सोचकर प्रलंबासुर आया एक ग्वाल बाल के रूप में। सबको लगा ये एक नया लड़का आया है हमारे ग्रुप में, तो बोला चलो होगा कोई वृंदावन में कोई न्यू फैमिली आया होगा। हाँ, इसका लड़का है शायद। तो प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल के रूप में आया, और उस दिन दो ग्रुप में, दो दल में लड़ाई होने वाला था। एक है बलराम का ग्रुप, एक है कृष्ण का ग्रुप। प्रलम्बासुर ने कृष्ण का ग्रुप में ज्वाइन किया और वो बलराम के साथ लड़ाई करने का तय किया, स्थिर किया। और उसका ये विचार ये था कि कुश्ती जब होता है, लड़ाई जब होता है, जो हर जाता है वो विजयी को अपना कंधे पर लेकर उसको चक्कर लगाना होता है। तो प्रलम्बासुर हार गया तो हारने के नाते उसको बलराम को कंधे पर लेना पड़ा। वो ये सुजोग का ही प्रतीक्षा कर रहा था और कंधे उठाने के बाद ही वो भागा। अपना जो विशाल असुर का शरीर प्रकाश हो गया। तो अचानक ऐसा होने से बलराम भी डर गया था, ये क्या हो रहा है। तो कृष्ण ने उसको बताया, बलराम डरो मत, याद करो तुम कौन हो। तो तब बलराम को याद आ गया वो कौन है। और तब बलराम उसको कंधे पर था, उसको हाथ पर, उसके सर पर ऐसा मारा, हिट हिम ऑन द हेड। और बलराम, बलराम सारे बल का स्रोत है, वो सारे शक्ति का स्रोत है बलराम। तो एक ऐसा आघात कैसा गिरा उसका सर पर, हजारों बजरे के समान। और प्रलम्बासुर मुंह से खून बमन करते हुए वो उसका देहांत हो गया। बलराम कभी, कृष्ण जब मथुरा चले गए तो बलराम भी कृष्ण के साथ गए मथुरा, तत्पश्चात द्वारका। कृष्ण बलराम हर समय एक ही साथ, अधिक से अधिक समय एक साथ रहते थे। तो जब द्वारका में जब थे तब कृष्ण ने बलराम को बोला वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि ब्रजवासी का मन में बहुत कष्ट हो रहा है। तो बलराम वृंदावन में गए थे और बलराम का भी गोपिया है। जैसे कृष्ण ने अपने गोपिया के साथ रास विलास करते हैं, रास नृत्य करते हैं, बलराम को भी वैसे गोपिया है। तो बलराम वहां जाके उनके साथ रास विलास किए, रास नृत्य किए। तो रास नृत्य के करने के पश्चात जमुना में नहाने का इच्छा हुआ, बल्कि जमुना कुछ दूर थी, काफी दूर थी वहां से। तो जमुना बोला, जमुना यहां आ जा। जमुना नहीं सुना, बलराम को बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित होके बोला, मेरा बात नहीं सुन रही है। तो अपना हाल लेकर जमुना को आकर्षण करने लगा। तो डर के मारे जमुना बोला, ठीक है मैं आ रहा हूं। ये बलराम का एक बहुत सुंदर लीला है, हलहति भीति जमुनाभम। बलराम के हल के भय से जमुना बलराम की इच्छा पूर्ण किया। और एक बार कुरुक्षेत्र में, मतलब हस्तिनापुर को भी जमुना में गिराने का तय किया था बलराम। जब सांब दुर्योधन का पुत्री लक्ष्मणा को किडनैप करने गया, अकेला गया। लक्ष्मणा बहुत सुंदरी थी, सांबो सोचा कि मैं उसको चुरा कर अपना पत्नी बनाऊंगा। ये क्षत्रिय के लिए ये सही है, और किसी के लिए नहीं। तो जब लक्ष्मणा को उठा के जब चल पड़ा अपना रथ में, तो ये खबर मिल गया कुरुओं को। तो सुनते ही उनको बहुत क्रोध हुआ, ऐसा किया ये लड़का, चलो उसको सजा देना चाहिए। तो सारे कुरु सैन्य आक्रमण किया सांबो को और सांबो को हराकर बंदी कर लिया, हस्तिनापुर में लाया। ये खबर द्वारका में पहुंचा। जदुओं ने ये खबर पाने के पश्चात बोला, क्या ये हमको लड़का को बंदी किया, ये है उसको, चलो उसको पर हम भी आक्रमण करेंगे। तो बलराम कुरुओं के प्रति, विशेष रूप से दुर्योधन के प्रति, वो बलराम का कुछ स्नेह था और दुर्योधन का पार्शियलिटी भी था उनके प्रति, दुर्योधन के प्रति उनका। तो बोला ठीक है चलो, लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, ये दो फैमिली मित्र हैं, ये दो परिवार, तो उनमें से कुछ ऐसे मीमांसा कर लेते हैं। तो बलराम ने खबर भेजा उग्रसेन के द्वारा कि हम दोनों परिवार में मित्रता है, तो ये अगर आपका लड़की को, मेरा पुत्र का पसंद आया, तो उसको शादी करने दीजिए, उसको बंदी करने का क्या कारण है। तो ये संवाद मिलने से दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया, बोला ये हमारे सबॉर्डिनेट हैं, हम हैं सम्राट और ये राजा हमारे अधीन है, ये उग्रसेन, और ये हमको ऑर्डर दे रहा है, ऐसा करो ऐसा करो। तो ये खबर जब मिला उग्रसेन के पास, तो बलराम बहुत क्रोधित हो गया, क्या तू क्या सोचता है, ये हमको मिनिमाइजिंग आवर स्टेटस, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज हियर, उग्रसेन इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय कृष्ण। सो बलराम हिमसेल्फ वेंट एंड ही गॉट हिज प्लाउ, दैट इज बलराम्स वेपन, एंड ही स्टार्टेड टू पुल हस्तिनापुर टू जमुना, एंड हस्तिनापुर देयर वाज एवरीवन सॉ दैट हस्तिनापुर इज जस्ट बीइंग ड्रैग्ड इनटू जमुना। सो देन दे ऑल फेल एट हिज फीट एंड सेड प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज फॉरगिव अस। तब बलराम बोला ठीक है, और इससे ऐसे लक्ष्मणा के साथ सांब का शादी हुआ। हरे कृष्ण। सो आई एंड नाउ, थैंक यू ऑल वेरी मच। लाइक दिस लीलाज देर आर एंडलेस, अनंत शेष, अनंत मुंह से अनंत काल तक इसको वर्णन करते हुए भी उसको अंत नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या कहना।